ओम शांति। 24 दिसंबर 1979। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो और फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेंगे, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का चल होना। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप, अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार। लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में, किसी के पास विशेष अलबेलापन और आलस के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राजसत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए न सुनो, प्रकृति की हलचल देख प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है, ऐसा समय का आह्वान कर रहे हो ना? 24 दिसंबर 1979। तो क्या सुना? चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो और फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना कितना सहज है जो बच्चे भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेंगे, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना। तो अब प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांच तत्वों का विकराल रूप होगा। तो चार प्रकार के पेपर बाबा ने यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला कौन सा? प्रकृति का पेपर। दूसरा विकारों का पेपर। तीसरा आत्माओं के द्वारा पेपर। और चौथा पुराने संस्कारों का पेपर। सबसे खतरनाक कौन सा है इसमें से? एक तरफ सभी खतरनाक है। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप। एक विकराल, एक अति विकराल, अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप, उसमें भी दो प्रकार। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार। लास्ट समय वह भी अपना चांस लेंगे, उसमें भी चार प्रकार, संस्कारों में भी चार प्रकार। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कारों का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास अलबेलापन, आलस्य, एक दूसरा व्यर्थ संकल्प, तीसरा किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में, और किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलापन और आलस के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। तीनों ही सत्ता हलचल में होगी, कौन कौन सी? राज, धर्म और विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा, क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनो, प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को क्या कर दो? शांत करो, अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो, तमोगुनी से सतोगुनी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है, ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना। 79 में बाबा ये बातें कह रहे हैं, दिसंबर मास 24 तारीख। तो चार प्रकार की हलचल है। सबसे पहली प्रकृति की हलचल होगी, दूसरी विकारों का अति विकराल रूप, तीसरा आत्माओं द्वारा वार, उसमें एक तमोगुनी आत्माओं द्वारा भटकती हुई आत्माओं के द्वारा, बैड स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट्स, और उसमें दूसरा भक्त आत्माओं की पुकार, और चौथे प्रकार की हलचल कौन सी? पुराने संस्कार, उसमें भी चार प्रकार, कर्म भोग, कर्म संबंध का बंधन, तीसरा आलस अलबेलापन, और चौथा व्यर्थ संकल्प। पांच खिलाड़ी एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, पांच खिलाड़ी प्रकृति के और पांच खिलाड़ी माया के, 10 खिलाड़ी टोटल एक साथ वार करेंगे। तो सबसे पहले है प्रकृति, प्रकृति के पांच तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति अर्थात धरती, जल पावक आग, गगन आकाश और समीर हवा, पांचों ही तत्व एक साथ वार करेंगे। क्या क्या करेंगे? धरती क्या करेगी? भूचाल, धरती में भूकंप आएगा। आकाश से क्या होगा? किसकी वर्षा? अतिवृष्टि, अधिक वर्षा, और अग्नि से, आकाश से बिजली। हवा से क्या होगा? तूफान आएगा, भवंडर उठेंगे, और आग से क्या होगा? आग, ज्वालामुखी फटेगी, सूरज भी आग उबलेगा, और जल क्या करेगा? जल में ही बना देगा, और जल क्या करेगा? सब कुछ सफाई करेगा। तो फ्लड्स, बाढ़, समुद्र का पानी धरती पर आ जाएगा। इसमें से यदि एक ही हलचल होती है पांच में से, वो भी कोई एक छोटी सी जगह पर, तो क्या होता है? कितनी हलचल हो जाती है संसार में। यदि सारी जगह पर और एक साथ और पांचों ही तत्वों के द्वारा हलचल हो जाए तो क्या होगा? कैसे मनुष्य अपने आप को अचल रख पाएगा? ऊपर से बिजलियां गिरेगी, कहीं अतिवृष्टि होगी, कहीं बिजली, कहीं सूखा, कहीं अकाल, अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। कहीं पर बाढ़ आएगी, कहीं पर भूकंप, कहीं पर अतिवृष्टि, कहीं पर अनावृष्टि, कहीं पर ज्वालामुखी फटेगा। वो एक ज्वालामुखी फटा था जिसको बाबा बहुत याद करते हैं, कौन सा? फॉल ऑफ पॉम्पे, हिरोशिमा नागासाकी। वो ज्वालामुखी थोड़ी था, वो तो बॉम्ब्स थे। फॉल ऑफ पॉम्पे, पॉम्पे नाम का शहर था इटली में, रोम में, 79 AD, बहुत भयंकर ज्वालामुखी फटा था, सारा के सारा पॉम्पे शहर खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। आज वहां टूरिस्ट प्लेस है, जो कुछ बचा कुचा, जो ढूंढ के निकाले, जो हड्डियां, जो जैसे पोजीशन में था, एक दो हड्डियां कंकाल, वो वैसे ही पोजीशन में, उससे पता चलता है वो लोग किस अवस्था में थे। पूरा के पूरा शहर पोम्पे, मुरलियों में आता है, बहुत समय से नहीं आया है, फॉल ऑफ पोम्पे का खेल, तो सारा संसार पोम्पे बन जाएगा, पोम्पे का शहर। ऐसा वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी था वहां पर, माउंट वेसुवियस पर्वत है, उसके ऊपर वो ज्वालामुखी का मुख है, वो जब निकला था पूरा के पूरा शहर समाप्त हो गया था। आधी रात को सारे लोग भागे थे, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, जितने थे सबके सब खत्म हो गए। तो वो तो एक ज्वालामुखी फटा था, ज्वालामुखी अर्थात लावा, लावा अर्थात आग होती है, वो आग आती है ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा जैसे बाढ़ आ रही है आग की, आग का समुंदर आ रहा है और जिस जिसको लग रही है वो सब कुछ जल रहा है, भस्म हो रहा है। तो ज्वालामुखी बहुत जबरदस्त स्पीड होती है उसकी, क्योंकि इतनी तेजी से निकलता है वो वहां से, सोना आग, आग आग निकलती है। तो एक तो ज्वालामुखी, नक्की जो है इसको फ्रोजन वोल्केनो कहा जाता है, नक्की जो है वो ज्वालामुखी का मुख है एक्चुअली, अंत में वहीं से ज्वालामुखी निकलेगा, फ्रोजन वोल्केनो है वो। तो एक तरफ ज्वालामुखी, दूसरी तरफ बाढ़, समुन्दर का सारा के सारा पानी धरती पर, जितने शहर है सारे गांव बस्ती सब कुछ पानी के अंदर, इतना भयंकर वेग से पानी अंदर आएगा। तीसरा भूकंप, धरती फटेगी, बहुत सारा उसके अंदर चला जाएगा। अभी थोड़ा सा शॉक होता है तो कितनी हलचल हो जाती है। तो ऐसा महाभयंकर महाविकराल भूचाल आएगा, भूकंप होगा और सब कुछ अंदर चला जाएगा। उसके बाद आकाश से क्या होगा, गोले गिरेंगे, उल्कापात, टूटा तारा, बहुत सारी हलचल उधर आकाश गंगा में होगी और अलग अलग जगह पर गिरेंगे, बिजली गिरेगी और सब कुछ समाप्त। और क्या होगा, जो पांचवा हवा, हवा में क्या होगा, तूफान, साइक्लोन, हरिकेन। और ऐसा यदि एक साथ हो तो कैसी भयंकर हलचल होगी संसार में। यहां तो बाबा केवल राज सत्ता, धर्म सत्ता और विज्ञान सत्ता की बात कर रहे, केवल इन तीन सत्ताओं की बात नहीं है, सारा ही मनुष्य जाति हलचल में होगी। अब जब बाहर ऐसा हो रहा है, ये चार प्रकार की हलचल में ये पहले प्रकार की हलचल है, उसमें ये पांच, और एक साथ, तो हमें क्या करना है। बाहर यदि भूकंप आए परंतु अंदर अकंप रहे, निष्कंप रहे, तो ही उस भूकंप से बचा जा सकता है। बाहर यदि आग है तो अंदर योग की आग हो, तो ही उस आग से बचा जा सकता है। ऊपर से यदि बिजली गिर रही है तो योग की और परमात्मा प्रेम की बिजली हमारे ही अंदर हो, तो ये बिजली उस बिजली को काट सकती है, ये दामिनी उस दामिनी को काट सकती है। अगला पानी, वहां पर यदि बाढ़ आ जाए तो यहां पर क्या हो, ज्ञान की बाढ़, ज्ञान से और योग से स्वयं को जिन्होंने अचल किया है वही इसमें स्थिर रह सकते हैं। एक बार सुनाया था यहाँ पर, एक या दो तीन बार सुनाया है, वो जेन मास्टर जाता है अपने, उसको एक मित्र भोजन पर बुलाता है, जापान में उसका घर होता है सातवीं मंजिल पर, तो वो जेन मास्टर बैठा रहता है, 30-40 लोग रहते हैं, प्रवचन चालू रहता है और अचानक भूकंप आता है, सारी जापान में तो बार बार आते ही रहता है, सारी बिल्डिंग हिलने लगती है और सारे लोग भागते हैं नीचे। वो जेन मास्टर जैसे ही भूकंप आता है चुपचाप बैठ जाता है। बाकी सारे के सारे, कोई लिफ्ट में जा रहा है, कोई सीढ़ियों पे जा रहा है, सब भागने लगे। और जो व्यक्ति है जिसने उसे बुलाया है अपने घर पर, उसको लगता है मैंने बुलाया और मैं ही भाग रहा हूँ, एक बार देखो तो सही क्या कर रहा है ये। तो उसको पीछे मुड़ के देखता है तो वो ध्यान में बैठा हुआ है आंखें बंद करके। तो फिर सोचता है कि मैं क्यों भागू, जो इनका होगा मेरे गुरु का मेरा भी होने दो। और वो वहीं रुक जाता है और गुरु के सामने जाके बैठ जाता है। थोड़े में भूकंप शांत हो जाता है तो गुरु आंख खोलते हैं, वो जेन मास्टर, और जहां प्रवचन चालू किया, बंद किया था वहीं से चालू करते हैं। वो कहते हैं अभी ये सब, वो मित्र कहता है ये तो मुझे कुछ भी याद नहीं, कहां से आप क्या प्रवचन कर रहे थे और कहां से चालू कर रहे हो, पहले तो ये बताओ कि सब लोग भागे आप क्यों नहीं भागे। तो वो क्या कहता है कि मैं भी भागा, परंतु अंतर इतना है कि तुम लोग सब बाहर भागे, मैं अंदर भागा जहां निष्कंप है। क्योंकि उत्तर बहुत अच्छा देते हैं, भूकंप तो सब जगह है ही है, संसार में सब जगह हर समय भूकंप ही भूकंप है, प्रतिपल भूकंप है। वो तो स्थूल भूकंप तो अब आया, वैसे तो भूकंप ही भूकंप है, चारों ओर हलचल ही हलचल के भूकंप। एक ही स्थान है स्वयं की आत्मा, अंतर जगत जो अकंप है, और जो वहां जाएगा वही अचल रह सकता है। नहीं तो बाहर इतनी हलचल इतनी हलचल, उस भूकंप के कारण कम, मनुष्यों के कारण ज्यादा। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या होगा, भागो, ये करो, वो करो, हलचल, भाग दौड़, सब कुछ होगा। मनुष्य के दो रूप वहां प्रकट होते हैं, एक तो बहुत अच्छा रूप जिसमें व्यक्ति बहुत मदद करता है, सब कुछ करते है, सारी संस्थाएं आ जाती है। दूसरा और एक रूप होता है, वो कौन सा? लूट, लूट, मुर्दों को भी पकड़ पकड़ के उनको भी लूटते हैं, उनके हाथों को काट काट के जो भी गहने हैं वो भी लूट के ले जाते हैं, सब कुछ होता है। प्राकृतिक आपदा त्रासदी के समय पर, हाँ कुछ तो बचेंगे ना, सब तो एक साथ नहीं जाएंगे। तो भूकंप, बाढ़, बिजली, ज्वालामुखी, और पांचवा पानी, पानी से तो वो हो गया बाढ़, तूफान। बाहर तूफान हो, परंतु ये निर्भर करता है हमारे अंदर कितना तूफान है। यदि अंदर शांत है तो बाहर तूफान हो नहीं सकता। बाहर का तूफान कितना ही बड़ा हो, अंदर जो शांत है, तो ये पांच तत्व पांच विकराल रूप धारण करेंगे। इसके लिए क्या करना है, अब से ही इन तत्वों का क्या करना है, 24 घंटे में, 24 घंटे में दो बार, ट्वाइस इनको सकाश देनी है, शांति की किरणें देनी है, पवित्रता की किरणें देनी है, ताकि कितनी भी हलचल हो हमारी प्रकृति के साथ बहुत मैत्री हो, हमने उसकी बहुत मदद की हो, हमारे जीवन में तारतम्यता हो उसके साथ, एक लयबद्धता हो, प्रकृति और हम अलग अलग ना हो, एक जीवन पूरा प्रकृति के साथ साथ चलता हो, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति से साथ तारतम्यता, ऐसा हमारा लयबद्ध जीवन हो प्रकृति के साथ। ऐसा हमारी कोई चलन ना हो कि जिसमें हम प्रकृति को दुख दे रहे हैं, तो फिर प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। तो ट्वाइस, एक अमृत वेला प्रकृति को सकाश 5 मिनट, और नुमा श्याम का योग, हर नुमा श्याम के योग में प्रकृति को सकाश देनी है। फरिश्ता रूप में जाओ या यहीं पर बैठकर या सूक्ष्म वतन से या जैसे भी करना हो, पांचों ही तत्वों को सकाश देनी है। एक तो ये, दूसरा बताया पांच विकार। कल की मुरली, माया से क्या करो विनोद भाई, माया से क्या करने को कहा था कल? रुको अब पूछना चालू करते हैं। कल की अव्यक्त मुरली, माया से क्या करना है? क्या करना है माया से? माया से दोस्ती? तो वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, फिर क्या है? एक मिनट, क्या करना है? पाठ पढ़ाती है, तो माया को दुश्मन नहीं समझो, उसको सहयोगी बना दो। वो पाठ पढ़ाती है, वो कौन से पाठ पढ़ाती है, क्या क्या पाठ पढ़ाती है, उन पाठ को सीखो और आगे बढ़ो। शांत स्वरूप का, अचल रहने का, एकर स्थिति का, या सहनशीलता का, या जो भी। इसके लिए ये जो विकार है उनसे लड़ते नहीं रहना है, उनको स्टडी करना है साक्षी होकर, कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं उनको देखना है, तो वो धीरे धीरे स्वतः ही विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये जो विकार है, यदि थोड़ा सा भी बचा हुआ कुछ रहा हुआ है, चाहे वो काम है या क्रोध अंदर बचा हुआ है, लोभ बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ, कुछ भी, वो अंत समय में वही एक विचार विकार बाहर निकलेगा और हमारी हमको हरा देगा। एकिलीज हिल अंग्रेजी में कहावत है, एकिलीज हिल अर्थात किसी व्यक्ति की कमजोरी। एकिलीज नाम का एक यूनान में एक माइथोलॉजिकल मिथक एक व्यक्तित्व है कि जो उसकी माँ उसके ये जो होती एड़ी से पकड़कर उसको एक समुन्द्र में डुबोती है, तो उसका पूरा शरीर वज्र का बन जाता है, परंतु उसका जो जहां से वो पकड़ती है बस उतना छूट जाता है। इसके लिए कोई भी एकिलीज को हरा नहीं सकता है, जो भी उसको मारता है उसको कुछ भी नहीं होता है। पर एक बार शत्रु को पता चल जाता है उसकी जो एड़ी है वहां यदि मार दिया जाए तो ये मरेगा, तो वो बराबर एक दिन उसको वहां मारता है और फिर उसकी मृत्यु होती है। इसके लिए इंग्लिश में कहावत है एकिलीज हील अर्थात हर एक की कमजोरी। कुछ ना कुछ महाभारत में भी इस तरह के कर्ण का उदाहरण है, दुर्योधन का, कर्ण का नहीं दुर्योधन का। तो उसका अर्थ है कि कोई भी एक कमजोरी जो बची हुई है, जैसे क्रोध जिसको खाली दबा के रख दिया है पूरा समाप्त नहीं, काम की वासना सबसे भयंकर तो वही है कि जो दबी हुई है उसका पूरा रूपांतरण नहीं हुआ है। परिस्थितियां यदि वैसी निर्माण हो गई या दृश्य वैसे आ गए तो वो वासना फिर से भभक उठेगी, उसको समाप्त नहीं किया है, इंतजार है उसको चिंगारी का। ऐसी ही परिस्थितियां क्रिएट होगी कि जिसमें वो बाहर निकल जाएगी। और जो सोचते थे हम ब्रह्मचर्य में स्थित है, व्यभिचार की ओर आकर्षण होगा यदि वो बचा हुआ है तो। इसके लिए पांच विकार का अति विकराल, ये तो पांच तत्व कहा, उससे भी खतरनाक तो ये है, क्योंकि उससे तो फिर भी हम बच जाएंगे, बचा सकते हैं कोई अगर सोचे, परंतु विकार तो आंतरिक है, वो तो हमारे ही अवचेतन मन में कहीं परतों के अंदर छिपे हुए है। लोभ है, अहंकार है। जो व्यक्ति कहता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए, उनमें भी कहीं ना कहीं लोभ है, और वो अचानक प्रकट होगा और उसको भी आश्चर्य होगा, मैं और ये क्या जमा कर रहा हूं। विकार इतने सूक्ष्म है, तत्वों से तो कई गुना सूक्ष्म है। तीसरा है, तीसरी हलचल कौन सी है? आत्माओं की हलचल। उसमें दो प्रकार, एक तो भटकती हुई आत्मा है, तमोगुनी आत्मा है, इविल स्पिरिट्स जिसको कहते हैं, और दूसरा है भक्तों की पुकार। भक्तों की पुकार तो ठीक है, माइल्ड है थोड़ा, जिसमें हमको साक्षात्कार कराना है, चलो कोई सोचे मैं नहीं सुनता हूं तो ठीक है चलेगा परंतु दूसरा है तमोगुनी आत्माओं का अटैक। तमोगुनी आत्माएं सबसे ज्यादा आक्रमण किस पर करती है? इविल स्पिरिट्स, जो कमजोर है, जिनका रस देह में है, जिनका रस आकर्षण देह में है, जिन्होंने अपने आप को बहुत समय तक देह से ऊपर नहीं उठाया है, अशरीरीपन का जिनका कम अभ्यास है, देह में आकर्षण ज्यादा है, देह के भोग में, क्योंकि उन आत्माओं को कुछ ना कुछ भोगना है, तो उसमें प्रवेश करेगी। और उसके लिए एक तो हमको तो बाबा कह रहे हैं कि दूसरी आत्माओं में भी, दूसरे शरीरों में भी यदि आत्माएं प्रवेश करे उनको भी हम वहां से निकाल सके, और इतनी सारी मौत का बाजार गर्म होगा, एक साथ हजारों लाखों मरेंगे तो कहां जाएंगे? दूसरे दूसरे शरीरों में प्रवेश करेंगे। बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में उदाहरण है, सिटी ऑफ सोलोमन, डेविड का बेटा, सन ऑफ डेविड सोलोमन, उसके शहर में, पूरा शहर के शहर में भूत और प्रेत आत्माओं का आक्रमण होता है। वो एक ही बचता है सोलोमन, जो कि जस्ट और सबसे न्यायी राजा होता है। कैसे उसने दिखाया है, भगवान से प्रार्थना करता है, उसको कोई एक अंगूठी मिलती है, और फिर कैसे वो सारे शहर को उन प्रेत आत्माओं से मुक्त करता है। उसी तरह जीसस क्राइस्ट के जीवन में भी दिखाया है कि जीसस क्राइस्ट नाव से उतरता है, अपने शिष्यों के साथ एक जगह आता है, एक स्थान पर, गैलिनीज नाम के कोई लोग होते हैं, उनके बीच में आता है, और वहां आते ही एक व्यक्ति भाग कर आता है, पागलों जैसे, उसके बड़े बड़े बाल है, अपने आप को खरोच रहा है, नोच रहा है, चिल्ला रहा है, चेन बनी हुई है उसके शरीरों पर, परंतु फिर भी वो संभलता नहीं है, क्योंकि उसमें वो कहता है, हु आर यू? जीसस क्राइस्ट उसको पूछता है, तो वो कहता है, आई एम लीजन, लीजन ऑफ इविल स्पिरिट। एक प्रेत आत्मा नहीं है मुझ में, असंख्य प्रेत आत्माएं मेरे शरीर में है। वो प्रेत आत्मा ही बोलती है कि वी आर लीजन, लीजन मतलब मेनी, बहुत सारी प्रेत आत्माएं हम है, और वो जो होते हैं कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है उस व्यक्ति को, कितना उसको बांध के रखते हैं। वो जंगलों में रहता है, गुफाओं में रहता है, शहर में आता है तो उधम मचाता है, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी प्रेत आत्माओं का उसमें प्रवेश होता है। वो कहता है कि मुझे बचाओ, वो प्रेत आत्माएं कहती है हमें मुक्त करो। अब बाहर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बाहर से तो वो पागल है व्यक्ति, और फिर जीसस क्राइस्ट उनको मुक्त करता है, उनको कहता है कम आउट, गो आउट। और वहां पर दिखाया है बहुत सारे सुअर होते हैं, बाइबल में तो ऐसा दिखाया है, 2000 सुअर, तो वो उनको कहता है निकलो और जाओ उनमें प्रवेश करो, और वो सारी प्रेतात्माएं उस व्यक्ति से निकलकर सारी की सारी सुअरों में प्रवेश करती है। वो सुअर सारे पागल होते, भाग के जाके समुद्र में छलांग लगाते, और सुअरों का जो मालिक होता है वो उनके पीछे पीछे, अरे मेरे सुअर, मेरे सुअर मेरे सुअर का क्या हुआ? तो और वो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है, क्योंकि इतनी प्रेत आत्माओं का प्रवेश होता है उसके अंदर, सारी की सारी निकल गई। दिखाया वो बाल ठीक कर रहा है अपने। तो ऐसी पावर ये वो कर सकता है जो इन सब से ऊपर है, जिसका रस देह में नहीं है, देह के भोग में नहीं है, जो प्रकृति पति है, पावरफुल है। ऐसी पावरफुल आत्मा ही निकाल सकती है, नहीं तो वो उसके अंदर की इसमें प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि उनको भोग भोगना है, क्योंकि वो किसी अकस्मात अकाले मृत्यु हुई है उनकी, इसके लिए उसमें से इधर भी आ सकती है, यदि हमारा भी रस उसमें है तो। इसके लिए देह के तल से आत्मा ऊपर उठी हुई हो, देह के रस से, देह के भोग से। इस शरीर का नहीं, वो तो किसमें भी जा सकती है, किसमें भी जा सकती है। वो एक दूसरा प्रकार है, दो प्रकार की होती है, गुड और बैड। बैड स्पिरिट, गुड स्पिरिट्स भी होती है। कुछ कुछ प्यासी आत्माएं भी होती है, उनको कुछ सुनना है वो उसमें आ जाएगी, परंतु जिसमें आती है, टॉर्मेंटेड एंड ट्विस्टेड द सोल, बाइबल में लिखा है, उसकी खुद की आत्मा को टॉर्मेंट बहुत सताती है वो आत्माएं, क्योंकि एक शरीर में दो आत्माएं रहना कोई साधारण बात तो नहीं है ना। वो कुछ करेगी, वो कुछ करेगी, दो आत्माएं एक साथ रहे तो ऐसी 20-20 आत्मा एक एक शरीर में प्रवेश, तो कितनी हलचल होगी। तो दूसरा है, तीसरा है आत्माओं की, एक तो तमोगुनी आत्माओं का आक्रमण और भक्तों की पुकार, और चौथा ये सबसे कड़ा है, इसमें फिर भी हम अपने आप को पावरफुल रख सके, विकार से भी छूट गए उस भूकंप से या उन तत्वों के हलचल से भी। चौथा है संस्कार, उसमें चार, सबसे पहला कर्म भोग, उससे कैसे छूटेंगे, वो हमारा ही कर्म भोग है, एक कर्म संबंध का बंधन, जिसके साथ ऐसे संबंध बना रखे हैं, उनके बंधन है, हिसाब किताब है, कल कहा ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतु होंगे। आलस, अलवेलापन और व्यर्थ संकल्प, इसके लिए कल क्या कहा? समर्थ संकल्प सोचो, सोचना ही है ना, तो ज्ञान के संकल्प सोचो। तो उसके लिए हमारे पास पावरफुल संकल्प, रोज की मुरली से, मुरली की सारी पॉइंट्स लिखने के अच्छा है कुछ एक एक दो ऐसे बहुत पावरफुल संकल्प निकाल लो उसमें से। बहुत सारी चीजें तो इन्फॉर्मेशन तो हमको पता ही है, ये है वो है ऐसा है वैसा है, महामूर्ख कौन है सब पता है, तो उसमें पावरफुल पॉइंट्स जो हमको हमारी स्थिति बनाने के लिए मदद करें, व्यर्थ आलस, आलस का भी ऐसा सूक्ष्म संस्कार है कि इतना गहरा है उसमें बैठा हुआ कि कैसे उसको निकाले। उसको निकालने के लिए झटका चाहिए बहुत, तो ही वो निकलता है, नहीं तो चालू रखता है, चालू रहता है, चालू रहता है, चालू। जैसे दिखाया एक वो एक राजनेता होता है, एक्स राजनेता भूतपूर्व, जो कि अब नहीं है, हार चुका है, पैसे कंगाल हो गया है, कहीं नौकरी के लिए लगता है, तो उसका मालिक उसको कहते हैं जाओ जाकर थोड़ा सामान लेके आओ भोजन बनाने के लिए। वो कहता है मुझे तो कुछ खबर ही नहीं, भाव वगैरह को मैं जानता नहीं हूँ, ये शहर मेरे लिए अनजान है, मैं सब्जियों के भाव का मुझे कोई ज्ञान नहीं। वो तो मालिक खुद जाके लेके आता है, फिर कहता है थोड़ा भोजन बना लो। वो कहता है मुझे चूल्हे पे बनाने की आदत ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे अभी तक तो मैं कहा था थर्ड पार्ट में, अभी तो मुझे आदत ही नहीं है। तो मालिक खुद ही बना लेता है, बोलते है आप भोजन खा लो, बोलता है अभी मैं कैसे आपको हर बात के लिए मना कर सकता हूँ, आखिर आप मेरे मालिक है इतना तो मुझे मानना ही पड़ेगा तो अलबेलापन आलस इतना गहरा है, पुरुषार्थ के लिए कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ ही लेते, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ना कोई ना कैसा ना कैसा बहाना हम निकाल ही लेते, हमारी एक्सपर्टीज है उसमें, मास्टरी हो गई है वो आप सोच लो कर्म भोग और कर्म संबंध। कर्म भोग जो है, कल बाबा ने कहा ना, उसको खुशी खुशी से, प्यार से, दुखी होकर नहीं। वो आएगा, बीमारी आएगी, सब होगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि जिसको, और हमको तो लगता है योगियों को तो और ही ज्यादा बीमारी आती है, जो हम कहते हैं कि योग से बीमारी से मुक्त है और ही ज्यादा बीमारियां, क्योंकि उनके जो हिसाब किताब है दूसरी आत्माओं से भी कम चुकते होंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बहुत जो अच्छे योगी है उनके बहुत सारे बाहर की आत्माओं से और हिसाब किताब चुकते हो गए, तो कहां से हिसाब किताब चुकते होंगे, खुद की देह से, कोई दूसरा थोड़ी ना उनको देह दुख देगा, और वो दुख देगा भी तो प्रभावित थोड़ी ना होंगे, दादियों को कोई दूसरा दुख दे और दादी उदास हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होगा ही नहीं कभी। इसके लिए एकमात्र उनका जो है वो एकमात्र देह है, उसी के द्वारा इतने सारे जन्मों के जो सारे हिसाब के एक देह के देह से चुप्त होंगे। इसलिए यदि देह से बीमारी आती है, यदि देह में तकलीफ है, नहीं परंतु एक ऐसा भी है कि देह की बीमारी आने के बाद स्थिति भी डाउन हो जाती है, क्योंकि पुरुषार्थ पहले से अगर किया हुआ नहीं है और बीमारी के समय पुरुषार्थ कर रहे तो कहां से होगा, उसके लिए तो पहले से ही देह जीत, देह से अतीत, देह से परे रहने का अभ्यास, नहीं तो देह में बहुत सारी बीमारियां हैं और ज्ञान का भी कोई चिंतन नहीं है, योग का भी कोई खास अभ्यास नहीं है, धारणाओं पे भी ऊपर नीचे है, सेवाएं हड्डी हड्डी नहीं दी है यज्ञ में, और फिर हम सोच रहे बीमारी आ गई अब कैसे इसको कर्म भोग को ठीक करे, कहां से होगा? वो तो तब होगा जब सब कुछ स्वाहा किया है, समर्पण किया है यज्ञ में, चारों ही सब्जेक्ट्स में, तब कहीं जाकर अगर बीमारी आती। इसके लिए अगर अगर वो उसका आधार है चार चीजें, परंतु हर प्रकार से स्वयं को परिपक्व बनाना है, ज्ञान से भी, योग से भी, धारणा से भी, सेवाओं में भी, हर प्रकार की सेवा, ताकि फिर कोई इस देह का भोग भी आ जाए तो फिर हमारी स्थिति ऊपर रहे, क्योंकि इस शरीर की हमने देखा इतने योगियों को हमने देखा है पिछले 15 साल में, इतने सारे योगी, इतने सारे जिनको बीमारी आते ही स्थिति हलचल में आ जाती है। ऐसे भी योगी देखे कि जिनकी स्थिति अचल अडोल रहती है, कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, कितने भी बड़ा कैंसर डायग्नोसिस हो गया, पूरे शरीर में फैल गया, परंतु फिर भी खुश, एकदम खुश, स्थिति एकदम पावरफुल, आंतरिक अवस्था। संजय भाई, अपने सुदाम भाई, अपने वामन भाई, ऐसी ऐसी बीमारियां, परंतु स्थिति बहुत शक्तिशाली अंदर से। पर साथ साथ कुछ ऐसी भी आत्माएं बहुत सारी कि जिनको छोटी सी छोटी चीज से हलचल, बहुत ज्यादा हलचल, बहुत ज्यादा इरिटेटेड नेचर हो जाता है। पहले जिनको हमने बहुत शांत देखा था, बीमारी के समय बहुत ज्यादा हलचल में भी देखा, छोटी छोटी बात में बिल्कुल चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन। परंतु बीमारी, हम जानते हैं बीमारी वैसी ही है, वो बहुत दर्द, व्यक्ति सो नहीं पाता है, रात भर सारे दिन भर दर्द होते रहता है, कुछ ना कुछ होते रहता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, खाने की भूख खत्म हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, योग लगता नहीं है, दर्द होते ही रहता है कहीं ना कहीं। और कहीं जा नहीं सकते, एक ही कमरे में बैठे हैं, कितने महीने हो गए, उसी एक ही बेड पर वही वही लोग दिखते हैं। तो ये सारी अवस्थाओं में, वो तो बीमारी की अवस्था है। फिर वहां तो कुछ कुछ हमने ऐसे भी देखे बहुत समय पहले कि एक कोई था कि जिसने दिन रात सेवा की यज्ञ में, सुबह से लेकर रात तक सेवा 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 सेवा, संपूर्ण समर्पित रूप से इसी यज्ञ में एक जगह पर मधुबन में ही बहुत दिन रात सेवा की थी, बहुत पहले कभी। और एक बार ऐसी बीमारी आ गई कि उसके बाद में फिर बहुत ज्यादा हलचल भी हो गई। उसको हमने ये भी कहते हुए सुना, बहुत पहले की बात है 2003 की, कि कितना अच्छा होता है अगर मैंने शादी कर ली होती तो आज बीबी होती और बच्चे होते। तो हलचल, क्योंकि क्या है, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं की, परंतु सेवा ही सेवा करते रहे दिन रात, सुबह से लेकर रात तक हलचल, दिन रात ट्रांसपोर्ट की सेवा थी उनकी, नीचे दिन रात सेवा सेवा सेवा, कोई टाइम ही नहीं था। परंतु योग, स्थिति नहीं, व्यर्थ हलचल, चर्चाएं बाहर की, ज्ञान का मनन, ज्ञान का चिंतन, केवल स्पीकर से सुबह सुबह मुरली सुन ली थोड़ी बहुत, इससे थोड़ी होता है। ये मुरली को एक बार सुनने का विषय ही नहीं है, एक बार सुन लिया, बैठ लिया, हो गया, काम पूरा हुआ। थोड़ी सुनी, थोड़ी पता नहीं, लेट गए, थोड़ी सुनी, वो थोड़ा छूट गया, क्या सुना पता ही नहीं, वो बस सुनने तक खाली बुद्धि वहां पर है, सुनते ही वो पूरा हो गया और सब बाकी हलचल कारोबार चालू। इससे कहां से वो ज्ञान समझ में आया, कितना गहरा है। हम अभी खाली इतना ही पढ़ रहे मुरली का थोड़ा सा ही भाग, और कितनी एक एक वाक्य में गहराई है। बाबा ये सब कब से कह रखा है उसने, 79 सारा सर राज, एक भी राज ऐसा है कि जो नहीं कहा है, सारी 69 से लेकर तो 80s तक की सारी मुरलियां उसमें ही सब कुछ कह दिया है। पर हमने पढ़ा नहीं, हमको समझा नहीं, पढ़ा है पर समझा नहीं शायद। तो ऐसा स्वयं को अचल, इन सब अवस्थाओं में भी फुल स्टॉप, कर्म संबंध का बंधन, किसी के साथ में व्यर्थ का संबंध जोड़ रखा है, अपने कोई खास कमजोरियां नहीं है पर उस एक आत्मा से जबरदस्त लगाव है, वो एक आत्मा से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। कि योगी का किसी आत्मा से अटैचमेंट होना, सब भूल जाएगा, वो आत्मा याद आएगी, वो चाहिए, उसकी गोद में देह छोड़े, ऐसी इच्छाएं होती है लोगों की, हाथों में हाथ हो, बाबा भी हो, बाबा तो है ही है, हाँ, मतलब इस तरह से इतना जबरदस्त वो ये है, लगाव है। हाँ वो तो, क्योंकि वो जो है इतना जबरदस्त आकर्षण है वो, कि ऐसा भी नहीं कि दैहिक आकर्षण है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं, परंतु इमोशनल बॉन्डिंग है, इमोशनल अटैचमेंट है उसमें, बहुत गहरा आकर्षण दो व्यक्तियों का। और फिर वो अलौकिक कारण भी देते, हम जन्म जन्म ही साथ थे, सतयुग में भी साथ थे, वहां पर भी हम ही थे, जैसे लक्ष्मी नारायण थे हम दोनों भी साथ में होंगे और द्वापर से भी हम लोग साथ रहे होंगे, इसीलिए तो, नहीं तो क्यों होगा ऐसा, ऐसे भी कहते हैं। ज्ञान युक्त तो भाषा बोलेंगे ना वो तो ज्ञानी, तो इसलिए तो हम दोनों का इतना पावरफुल कनेक्शन है कि मैं संकल्प करता हूं उसको पता चल जाता है। मैं अभी फोन ही करने वाला था तो उसको उसका फोन आ गया, ये सब क्या कहते हैं उसको इस तरह से अच्छे ज्ञानी तो अच्छे उत्तर देंगे ना, हम दोनों का थोड़ा तो ये आत्मा ही खींचेगी बाद में, वो याद आएगी हाँ सब पता है एक दूसरे की दिनचर्या पता है, एक दो को पूरी दिनचर्या पता है, अभी ये कर रहे होंगे अभी वो कर रहे होंगे, पूरी नजर ही उधर है एक दो पर तो पर कोई ये स्वीकार नहीं करता है कि मेरा आकर्षण है, अटैचमेंट है। हाँ परंतु अपने विकारों का तो खुद ही डायग्नोस करना है ना, ये डायग्नोसिस खुद करते आना चाहिए अपना। हाँ व्यक्ति को पता रहता है परंतु अवेयरनेस, अवेयरनेस होश होश हाँ मतलब उसकी पालना भी हम करते रहते, क्योंकि ऐसा लगता है वो ज्ञान युक्त तो है, ये जो संबंध है योगी का संबंध है, अच्छा है, इससे सेवाएं भी तो हो रही है, ध्यान तो रखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे हमारे पास दूसरे भी विचार है, वहां पर प्रेम वाला नहीं, वहां पे थोड़ा सा विकराल रूप स्वयं के ऊपर धारण करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने अकेला अकेले का पाठ पढ़ा है, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की और ये यात्रा है, लॉटिनस ने कहा है बहुत पहले, यात्रा अकेले की है, कोई इसमें साथी नहीं, एकांगी पगदंडी है, एकला चालो रे। ओम शांति।